साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पातुकर आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ दक्षिण महासंघ के अध्यक्ष, समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघु ठाकुर जी छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार ठाकुर साहब
जी। नमस्कार। नमस्कार पत्र जी।
भाई साहब, हम आपसे मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज चुनाव जो संपन्न होना था उसे चुनाव आयोग द्वारा निरस्त किया गया, तो यह पंचायत चुनाव निरस्त कर मध्य प्रदेश सरकार ने क्या ग्रामीण मतदाताओं की राजनीतिक भावनाओं से खिलवाड़ किया है, यह हम आपसे जानना चाह रहे हैं।
ये पंचायत चुनाव के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और प्रतिपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने, दोनों ने मिलजुल करके खेल खेला और इसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य की आरक्षण न हो पाए। जब पंचायत के चुनाव होना थे और उस समय ही सरकार को चाहिए था कि वो आरक्षण के बारे में जो तैयारी थी वो उसको पूरी करती या जो पुरानी प्रक्रिया थी इसको पूरा करती। दूसरा, जो प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष ने भी इस सवाल को लेकर कि रोटेशन नहीं हुआ है, पहले कोई आपत्ति नहीं की, बाद में जब ऐलान हो गया और तैयारी हो गई, नामांकन होने लगे, तब वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट को ये अवसर मिल गया। तो ये दोनों ही पार्टियों ने एक प्रकार से जनता के साथ बड़ा संबंध किया है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति उस पर दर्ज कराई, तब बेहतर था कि सरकार तभी उसको रोक देती। इसके बाद भी 7 दिन तक लगातार सरकार कहती रही कि हम चुनाव कराएंगे, आरक्षण कराएंगे, हम जनसंपर्क प्रस्ताव लाएंगे। और इस प्रदेश के लाखों लोगों के लिए जो पंचायतों में पंच से लेकर सरपंच के प्रत्याशी थे, उनके पास लूट लिया गया, उनका पैसा बहुत बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, तकलीफ उठेंगे। इतने ही मात्र नहीं हुआ, उनके एक प्रकार का बहुत मानसिक तनाव हुआ और समाज में भी कई तरह के तनाव पैदा हुए। दूसरा, जब नामांकन हो गया और पिछले वर्ग के लिए आपने आरक्षण दिया है, उसमें नामांकन हुआ, अब अगर उसमें जनरल सीट का भी नामांकन होगा तो जो समाज में एक रास्ता है, एक जुटता है, उस पर फूटन होगी, टूट होगी, क्योंकि अब नए प्रकार के लोगों की अपेक्षाएं जगेंगी, वो नए प्रकार के लोगों की खड़े भी हो गए बीच में। तो एक प्रकार से ये जो मुद्दा था, जो मुद्दा कोई लोगों के दिमाग में कोई विवाद में नहीं था, उसको सरकार ने पैदा कर दिया और पैदा करके ये प्रदेश के लिए एक प्रकार की तकलीफ कर डाल दिया। हजारों करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के गरीब लोगों का चुनाव के लिए जनता को मौजूद बनाया गया, बर्बाद हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने विधानसभा में नाटक किया। पहले कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगाया, भाजपा और कांग्रेस पे आरोप लगाया, अंत में दोनों ने मिलकर प्रस्ताव कर लिया। अब बोले हम सब दोनों साथ चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब दोनों को साथ में सुप्रीम कोर्ट में जाना था तो फिर पहले खिलाफ पार्टी ले गए, तभी नहीं जाते, तभी पहले सरकार से बात कर लेते। तो कुल मिलाकर के प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको बहुत धोखा किया है और चुनाव आयोग की भी जो भूमिका है
भाई साहब,
वो भी मुझे
जी। जैसा कि अभी आपने पूरी वस्तु स्थिति इस संबंध में बताए, तो इस परिस्थिति में चुनाव आयोग की भूमिका पर आपके अपने क्या विचार है?
चुनाव आयोग की भूमिका भी इसमें बहुत ही संदिग्ध और सरकारपरस्त है। जब 4 दिन पहले ये मामला विधानसभा में प्रस्ताव होकर के पूरे विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके आर्डिनेंस वापस कर लिया और राज्यपाल ने उसका हस्ताक्षर कर लिए, आर्डिनेंस वापसी का आर्डिनेंस, ये मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक इतिहास में, क्या मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली घटना होगी कि जहां पर सरकार ने कोई नियम अध्यादेश से लागू किया, वो अध्यादेश से ही सरकार ने अपने नियम को रद्द किया। पर खैर, जब उसको रद्द करके सरकार ने प्रस्ताव वहां भेज दिया चुनाव आयोग के पास में, तो चुनाव आयोग को तत्काल उसको मान के देना चाहिए था। चुनाव आयोग ने चार्जर के सामने लगाए बहाना करके कि उस पर लीगल ओपिनियन लेंगे। लीगल ओपिनियन लेने में भी इतना समय थोड़ी लगता है, आप के वकील लोग हैं, आपके पास सर्व जनता का पैसा है, आप वो उसी दिन भी ले सकते थे। आपको पता है कि प्रस्ताव आने वाला उसके पहले ले लेते कि साहब ये आने वाला है प्रस्ताव, विधानसभा कल हो गया है, आज वापस ये लोग लेके आएंगे, हम पहले से पूछ लेते हैं। तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो भी बहुत ही संदिग्ध है और वो भी सत्तापरस्त भूमिका है। और एक और बात मैं दुख के साथ कहूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमको इस मामले में निराश किया है। इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ, एक तरफ रोज हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि साहब फैसले जल्दी होना चाहिए, मामले लंबित हैं, मामले पड़े हुए हैं। अब कोई बड़े लोगों के मामले जब कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उसकी तत्काल सुनवाई हो जाती है। जो लोग देश से भाग जा रहे हैं उनकी सुनवाई तत्काल हो जाती है, जो लोग ड्रग माफिया हैं उनकी सुनवाई तत्काल हो जा रही है। परंतु इस गंभीर मामले को जिसमें प्रदेश के लाखों प्रत्याशियों का सवाल था और करोड़ों मतदाताओं का सवाल था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन के कार्यकाल का आप 3 तारीख को सुनवाई करें। जो फैसला उसी दिन देते थे तो आर पार मामला होता खत्म हो जाती। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निराशाजनक है, जनतंत्र के लिए या संविधान के दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण नहीं है। चुनाव आयोग ने पक्षपातपूर्ण भूमिका अदा की है और सरकार का प्रतिरूप सिद्ध हुआ है और प्रतिपक्ष निकम्मा और नाकार से हुआ है और अंतिम से सरकार के सामने दोस्ती कर ली अपनी और सरकार का ये पूरा सर्विस हुआ है। कुल मिलाकर कुछ चुनाव टालना था, अभी उन्होंने चुनाव बढ़ा दिए। अब ये चुनाव कब होंगे, चाहे उन्हें अभी कल अखबार में बयान आया है और आज के अखबार में कुछ बयान आया है कि सरकार के लिए हम भी जनगणना कराएंगे और जनगणना करा के परिणामों के आधार पर दावा करेंगे। जब जनगणना आपको करना थी तो ये आपने पहले क्यों निकाल लिया, और पहले हुई है महाजन कमीशन के समय पर भी जो गणना थी उसका एक आकलन हुआ था, मंडल कमीशन के समय भी आकलन हुआ था, इसके पहले जो आप आरक्षण दे रहे हैं उस समय भी आकलन हुआ है। पर अग्रवाल ने अभी भी करा थी आपको, तो आप उसको पहले कर रहे थे। अब 4 महीने का उन्होंने कहा हम कराएंगे, 4 महीने में नहीं हो पाएगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर समय चला जाएगा, फिर कोई कोर्ट में चला जाएगा, फिर एक बार में स्टे हो जाएगा और कुछ जाके चुनाव आ जाएंगे। तो ये जो है ये सारा का सारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण के विरोध का खेल है। इस खेल में हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाएं और हिंदुस्तान की और प्रदेश की मध्यप्रदेश की सत्ता और विपक्ष दोनों शामिल है। ये बात क्या है
भाई साहब, जैसा कि अभी मध्यप्रदेश में पंचायत की राज चुनाव निरस्त हुए, लेकिन देखने में आया है कि मध्यप्रदेश में सभी स्थानीय निकाय, चाहे वो कृषि मंडी हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, इनके सालों से चुनाव नहीं हुए। क्या यह राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है?
यह राजनीतिक अधिकारों का नहीं, राजनीतिक कर्तव्य का उल्लंघन है। एक निर्वाचित सरकार का यह दायित्व होता है कि वो इन संस्थाओं को चुनाव कराए। नगर निगम के नगर पालिकाओं को चुनाव की घोषणा हुई थी, उसमें यही बहाना हुआ के साथ कॉर्पोरेट फाइल में सारे कोर्ट के नाम पर सृष्टि कर दिया गया। अब मामला लापता है, कोई चर्चा नहीं कर रहा। खैर उसकी कोई चर्चा ना हो पाए तो 1 साल के बाद में पंचायत चुनाव की चर्चा कर दी। अब पंचायत चुनाव चल गए हैं, अब नए प्रकार का खेल चलेगा, वो फिर 1 साल निकाल लेंगे, तब तक जो है विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। तो सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये षड्यंत्र पूरा मिला जुला है और ये जनतंत्र को, लोकतंत्र को और जनमत को परास्त करने के लिए किया गया है।
भाई साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो चुनाव निरस्त हुआ है इसमें सार्वजनिक संस्थाओं का नैतिक पतन जो हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
जी फिर से बोले, आपका सवाल दोबारा बोले।
जो चुनाव निरस्त हुए अभी इसमें सार्वजनिक संस्थाओं का नैतिक पतन हो रहा है, इसमें आपके अपने क्या विचार है?
किस संस्थाओं का?
सार्वजनिक संस्थाओं का नैतिक पतन।
जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जो नैतिक पतन हो रहा है ये बहुत ही चिंताजनक, इसलिए कि जो संवैधानिक संस्थाएं होती है वो संवैधानिक संस्थाएं एक प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने वाली होती है, उनका दायित्व होता है उनको लागू करें। अगर संवैधानिक संस्थाएं ही सरकार के हाथ का खिलौना बन जाएंगी तो फिर देश में संविधान कहां रहेगा? ये एक प्रकार से संविधान को भी हत्या करने का प्रयास है।
भाई साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये चुनाव निरस्त होने पर चुनाव आयोग की भूमिका कटघरे में खड़ी हो गई है और भूमिका पर सवाल उठ रहे, तो ऐसे समय में क्या चुनाव आयोग ने जो अभी घोषणा की कि चुनाव हम निरस्त कर रहे और चुनाव में प्रत्यक्षियों की हम जमानत राशि वापस करेंगे, लेकिन जिन प्रत्यक्षियों ने अपना लाखों रुपया खर्च किया, क्या वो चुनाव आयोग ने वापस करना चाहिए?
चुनाव आयोग को वापस करना चाहिए, सरकार को क्षतिपूर्ति देना चाहिए।
आपसे
इस पर सरकार की भूमिका है तो सरकार को भी क्षतिपूर्ति करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा निधि तो बहुत मामूली होती है पंचायतों में, ज्यादा नहीं होती है, पर जो पैसा लगा है गरीबों का उसका क्या होगा?
एक आपसे अंतिम प्रश्न भाई साहब, जो ये सारी अभी गतिविधियां संचालित हुई है इनमें कांग्रेस और भाजपा बराबर दोषी रही है और आपने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा है, तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा? क्योंकि तीसरी सरकार जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत नगर पंचायत, इससे सालों से चुनाव नहीं होते आए हैं और मतदाताओं के साथ खिलवाड़ होते आ रहा है।
नहीं, इसके और भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। ये उपीत तुम्हारे पढ़ते हैं कि पंचायतों के चुनाव से पंचायतों के लिए जो सरकारी निधि का हिस्सा मिलता है वो कोई मिल पाता है, वो उसका इस्तेमाल सरकार करती रहती है। तो ये जो है ये एक प्रकार से जनता के जो आर्थिक अधिकार है, स्थानीय विकास के अधिकार है, उनको भी खत्म करने का षड्यंत्र है। तो ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक अपराध है, इसके लिए जिम्मेवारी तय होना चाहिए और दर्ज देना चाहिए।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू होकर एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय रखी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी वर्ष 2021 की विदाई एवं वर्ष 2022 के शुभ आगमन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता है।
धन्यवाद फतुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा वाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।